ये हफ्ता वार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 16 फरवरी 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतलब की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून जान सुनहरी मतन मरकज। अव्वल हुक्म ये है कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जवाबी मतालिया जबूर। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में से खून की शाहराहें हैं। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सहून में खुदावन के हजूर हाजिर होता है। ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर, देख और अपने ममसूख के चेहरे पर नजर कर, क्योंकि खुदावन खुदा आफ्ताब और सिपर है। खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रो से कोई नेमत बाज न रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। दरसीवाज बाइबल में से यसाया। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालब हो, जब तक वो नज़दीक है उससे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदावंद की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करेगा। इंसान इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। हाकम की मेहरबानी के तालब बहुत हैं, लेकिन इंसान का फैसला खुदावंद की तरफ से है। पैदाइश। और ईसाऊ ने याकूब से उस बरकत के सबब जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा, और ईसाऊ ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नज़दीक है, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। पैदाइश। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम मनाइम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासदों को अदूम के मुल्क को, जो शेर की सरजमीन में है, अपने भाई ईसाऊ के पास भेजा। बस कासद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई ईसाऊ के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इजहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हीच हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे मेरे भाई ईसाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार न डाले। और याकूब अकेला रह गया, और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने पर चढ़ गई, और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा, कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है, और उसने उसे वहाँ बरकत दी। और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफ्ताब तुलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। पैदाइश। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि ईसाऊ 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। और ईसाऊ उसे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। तवारीख। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पार से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। गलतियों। देख मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, क्योंकि हम रूह के बाइस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद पर आने के मंतजर हैं। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदावंद में तुम पर भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो खा कोई हो सजा पाएगा। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खदमत करो। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। क्रंथियों। पौलुस, जो खुदा की मर्जी से यसूसी का रसूल होने के लिए बुलाया गया, हमारे बाप खुदावन और खुदावन यसूसी की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यसू में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इलम की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरक़े ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राई होकर कामिल बने रहो। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र न करे, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यसू में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीजगी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदा पर फख्र करे। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जान में इखलाकी आजादी है। जान मादा जिंदगी इंसान की जहानत है, जिसकी इंफरादियत होती है लेकिन मादे में नहीं। जान रूह से कमतर किसी चीज की अकासी कभी नहीं कर सकती। इंसान रूह का इजहार। सवालात ये हैं, खुदा की शनाख्तें क्या है, जान क्या है, क्या जिंदगी या जान बनाई गई चीज में मौजूद होती है, کچھ بھی حقیقی اور ابدی نہیں ہے، کچھ بھی روح نہیں ہے ماں سوائے خدا اور اس کے خیال کے، بدی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہ تو کوئی شخص، جگہ اور نہ ہی کوئی چیز ہے، بلکہ محض ایک عقیدہ، مادی حس کا ایک بھرم ہے۔ ساری حقیقت کی شناخت یا خیال ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن روح یا سب کا الہی اصول روح کی بناوٹیں نہیں ہیں۔ جان، روح، خدا، خالق، حکمران، محدود شکل سے باہر لامحدود اصول کا مترادف لفظ ہے جو صرف عکس کی تشکیل کرتا ہے۔ روح خدا اور جان ہے، اسی لیے جان مادے میں نہیں ہوتی۔ خدا صرف اسی میں ظاہر ہوتا ہے جو زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، جو خدا کی خصوصیات اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ انسانی صورت آئینے میں دکھائی دیتی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے شخص کے رنگ، شکل اور حرکات کو دہراتی ہے۔ روح سے معمور بزرگوں نے سچائی کی آواز سنی اور انہوں نے خدا کے ساتھ ویسے ہی بات کی جیسے انسان انسانوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یعقوب تنہا غلطی کے ساتھ لڑ رہا تھا، زندگی، مواد اور ذہانت کی فانی حس کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا، جیسے کہ یہ سب مادے کے ساتھ اس کی جھوٹی تسکینوں اور تکالیف کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ سچائی اور محبت کی جانب سے ایک پیغام اس پر ظاہر ہوا اور اس نے اسے یا اس کی طاقت کو یا اپنی غلطی کو مارا، جب تک کہ اس نے اس کی غیر حقیقت کو نہ دیکھا اور وہاں ادراک میں آتے ہوئے سچائی نے الہی سائنس کے اس فنیل میں اسے روحانی قوت بخشی۔ پھر روحانی مبشر نے کہا، مجھے جانے دے کہ پوپ پھٹ چلی، یعنی تجھ پر سچائی اور محبت کی روشنی پڑے، مگر اجداد نے اس کی غلطی کو سمجھتے ہوئے اور اس کی مدد کی ضرورت کو جانتے ہوئے اس جلالی نور پر اس کی گرفت کو ڈھیلا نہیں کیا جب تک کہ اس کی فطرت بدل نہ گئی۔ بس یعقوب کی جدوجہد کا نتیجہ نکلا، اس نے روح اور روحانی قوت کے فہم کے ساتھ مادی غلطی کو فتح کیا، اس نے اس آدمی کو بدل کر رکھ دیا۔ اسے مزید یعقوب نہ کہا گیا بلکہ اسرائیل، خدا کا شہزادہ، یا خدا کا سپاہی کہا گیا جس نے اچھی لڑائی لڑی تھی۔ جان انسان کا الہی اصول ہے اور یہ کبھی گناہ نہیں کرتی، لہذا جان لافانی ہے۔ سائنس میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ مادی فہم ہے، نہ کہ جان ہے جو گناہ کرتی ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ گناہ کا فہم ہی ہوتا ہے جو کھو جاتا ہے، نہ کہ گناہ آلودہ جان ہے۔ جہاں معبود کے معنی مطلوب ہوں، وہاں لفظ جان کا موضوع استعمال صرف لفظ خدا کے ساتھ تبادلہ کرنے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دیگر معاملات میں فہم کا لفظ استعمال کریں تو آپ کو اس کا سائنسی مفہوم میسر ہوگا، جیسے کہ کرسچن سائنس میں استعمال کیا گیا ہے۔ جان، روح یا خدا کے لیے موضوع مترادف الفاظ ہیں، لیکن سائنس کے علاوہ جان فہم کے ساتھ، مادی احساس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ روح یعنی خدا کو تب سنا جاتا ہے جب حواس خاموش ہوں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم سب اس سے زیادہ کرنے کے قابل ہیں۔ روح کا عمل یا اثر آزادی عطا کرتا ہے، جو تخفیف کا مظاہرہ اور غیر تربیت یافتہ ہونٹوں کی گرم جوشی واضح کرتی ہے۔ الہی سائنس مادی حواس کی جھوٹی گواہی کو تبدیل کر دیتی ہے اور یوں غلطی کی بنیادوں کو توڑ دیتی ہے۔ لہذا سائنس اور حواس کے مابین دشمنی اور حسی غلطیوں کی بدولت کامل سمجھ حاصل کرنے کے ناممکنات ختم ہو جاتے ہیں۔ مادے کے نام نہاد قوانین اور طبی سائنس نے کبھی بشر کو مکمل، ہم آہنگ اور لافانی نہیں بنایا۔ انسان تب ہم آہنگ ہوتا ہے جب روح کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہستی کی سچائی کو سمجھنے کی اہمیت ہے جو روحانی وجودیت کے قوانین کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کوئی بیمار یا گناہگار اپنی اس ضرورت کے لیے بیدار ہوتے ہیں جس کے لیے وہ کبھی نہیں ہوئے، تو وہ الہی سائنس کے قبول کرنے والے ہوں گے۔ जो जान की जानब और मादी फहम से दूर खिंचाव पैदा करती है, बदन से ख्यालत को तलफ करती है और हत्ता के मादी अकल को भी बीमारी या गुनाह से किसी बेहतर चीज़ के तसव्वुर से बुलंद करती है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ज़िंदगी खुद परवर है और हमें रूह की अबदी हम आहंगी से मुनकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बज़ाहर फ़ानी एहसासात में इख्तलाफात हैं। ये खुदा इलाही असूल से हमारी नावाकफियत है जो ज़ाहरी इख्तलाफात को जन्म देती है और इससे मुतलक बेहतर सोच हम आहंगी को बहाल करती है। सच्चाई तफसील में हमें मजबूर करेगी कि हम सब खुशियों और दुखों के फहम का ज़िंदगी की खुशियों के साथ तबादला करें। जब मादी से रूहानी बुनियादों पर ज़िंदगी और जहानत का फहम अपना नुक्ता नज़र तब्दील करता है तो हमें ज़िंदगी की हकीकत मुयस्सर आएगी, यानी फहम पर रूह का काबू, तो हम मसीहत या सच्चाई को उसके इलाही असूल में पाएंगे। किसी हम आहंग और फ़ानी इंसान के हासिल होने और उसकी काबिलियतों के इजहार से कबल ये एक नुक्ता अरूज होना चाहिए। इलाही साइंस की शनाख्त होने से कबल इस अजीम काम की तकमील को देखते हुए इलाही असूल से अपने ख्यालत को हटाना बहुत अहम है, ताकि महदूद अकीदे को उसकी गलती से दस्तबरदार होने के लिए तैयार किया जा सके। इंसानी बदन में नामियाती और बाजाबता सेहत के लिए जिसे अब बेहतरीन हालत समझा जाता है, शायद वो सेहत के लिए मजीद नागजीर ना रहे। इखलाकी हालतें हमेशा सेहत अफजा और हम आहंग पाई जाती हैं। ना नामियाती गैर फाली ना फाली खुदा के इख्तियार से बाहर है, और तब्दील शुदा फानी ख्याल के लिए इंसान फितरी और कुदरती पाया जाएगा, और इसीलिए वो अपनी पहली हालत से ज़्यादा अपने इजहार में हम आहंग होगा, वो हालत जो इंसानी अकीदे ने बनाई और उसकी मंजूरी दी। चूंकि इंसानी सोच शावरी दर्द और बेअरामी, खुशी और गमी, खौफ से उम्मीद और ईमान से फहम के एक मरहले से दूसरे में तब्दील होती रहती है, इसलिए ज़ाहरी इजहार बिलाखिर इंसान पर जान की हुक्मरानी होगा, ना कि मादी फहम की हुक्मरानी होगा। खुदा की हुक्मरानी की अकासी करते हुए इंसान खुद पर हुक्मरान है। सेहत से मुतलक हमारे मादी नज़रियात को बेकीमत साबित करते हुए जब इंसान इलाही रूह के मातहत हो जाता है तो मौत या गुनाह के इख्तियार में नहीं हो सकता। आसमान की बादशाही, इलाही साइंस में हम आहंगी की सल्तनत, गलती ना करने वाले की रियासत, अबदी और कादिर मुतलिक अकद, रूह का माहौल जहां जान आला है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ्राइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाए, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी साइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना जहनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।